पेज 12, लेसन नंबर 3, भूमंडल, ग्लोब तथा नक्शा। सानिया और साहिल रात को छत पर बैठकर तारे देख रहे थे, तभी साहिल ने सोनिया से कहा, तुमने मुझे महाद्वीपों, सागरों और पृथ्वी के बारे में बताया कि इनका निर्माण कैसे हुआ, लेकिन पृथ्वी कैसी दिखती है? सोनिया ने उत्तर दिया, हमारी पृथ्वी एक टेढ़े रखे हुए संतरे की तरह है जो गोल घूम रहा है। वह रसोई से संतरा ले आई और इसके बीच ऊपर से नीचे तक एक पेंसिल घुसा दी। पेंसिल की नोक पर सोनिया ने संतरे को हल्के से झुकाया, फिर पेंसिल की धुरी पर वह संतरा घुमाने लगी। उसने कहा, ठीक संतरे की तरह हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, वह ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है। यहां पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बने हैं। पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब में देखो, पृथ्वी के सबसे ऊपर एक बिंदु है, यह उत्तरी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी के सबसे नीचे जो बिंदु है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी के ठीक बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। अब परिक्रमण और परिभ्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक काल्पनिक केंद्र में अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, ठीक वैसे जैसे सानिया ने संतरे को पेंसिल की धुरी पर घुमाया। इसे परिक्रमण कहते हैं। साथ साथ पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की इस चाल को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहां दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है, क्योंकि वहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। मजे की बात, पृथ्वी के आकार की खोज प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने दावा किया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। लगभग 500 साल पहले एक पोलिश पुजारी निकोलम कॉपरनिकम ने यह घोषणा की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। पेज 14, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में 365 और एक चौथाई दिन का समय लगाती है और यह एक वर्ष कहलाता है। परिभ्रमण के कारण हमें शीत, बसंत, ग्रीष्म और शरद जैसे विभिन्न ऋतुओं का अनुभव मिलता है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को दो समान भागों में बांटती है। यह है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पड़ता है। अब एक चित्र इसी पेज पर दिया है, पेज नंबर 14 पर, जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहां दिन और दूसरे भाग में रात होती है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर पश्चिम से पूर्व सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक समय पर एक गोलार्ध में एक समान मौसम रहता है। ये दिखाता है चित्र। आगे पढ़ें। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर हल्के से झुकी हुई है, एक समय पर एक गोलार्ध में एक समान मौसम रहता है। उदाहरण के तौर पर, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तब दक्षिणी गोलार्ध सूरज से परे होता है। इसलिए मई के महीने में जब उत्तरी गोलार्ध के यूरोप में गर्मी होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध के ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। अब अध्यापक के लिए सुझाव, छात्र पृथ्वी के परिक्रमण व परिभ्रमण का प्रदर्शन करें। 3 छात्र को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमान बनाएं। जब ये बच्चे अपनी जगह पर घूमने लगें, उन्हें सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर घूमने को कहें। 6 अप्रैल 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। 2 वर्ष बाद दिसंबर 1911 में नॉर्वे के रोल्ड अमंडसन का दल पहली बार अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे। पेज 15, ग्लोब। पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ग्लोब बहुत काम आता है। जिस तरह एक अच्छे मॉडल का हवाई जहाज वास्तविक हवाई जहाज की तरह दिखता है, उसी तरह ग्लोब भी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। इसका अर्थ है, ग्लोब पर पृथ्वी के एक एक अंश को बराबर नाप कर छोटा दिखाया गया है। ग्लोब में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया गया है। इसलिए ग्लोब पर 1000 किलोमीटर चौड़े देश को 10 सेंटीमीटर चौड़ा देखा जा सकता है। यहां ग्लोब पर दिखाया गया 1 सेंटीमीटर ग्रह के 100 किलोमीटर के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला ग्लोब करीब 500 साल पूर्व बना था? उसमें उत्तर व दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे। इन महाद्वीपों की खोज लगभग उसी समय इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा हुई थी। कोलंबस असल में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था। उसका अंदाजा था कि पृथ्वी गोल है। कोलंबस ने सोचा कि यदि वह पश्चिम की ओर चलता चले तो पूर्व में स्थित भारत पहुंच जाएगा। उस समय उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों के बारे में किसी को न पता था। जब कोलंबस अटलांटिक महासागर पार करके कुछ द्वीपों पर पहुंचा तो उसने सोचा कि वह भारत पहुंच गया था। तभी से उन द्वीपों का नाम इंडीज पड़ा, जिन्हें हम आज वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। कुछ साल बाद ही पुर्तगाली फर्डिनेंड मैगेलन के जहाज ने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। उस जहाजी यात्रा को 3 साल लगे। पेज 16, नक्शा। हम ग्लोब को किताब में कैसे रखें? कागज पर ग्रह का चित्र बनाने के लिए हम नक्शे का प्रयोग करते हैं। नक्शा या मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चित्र है। आपको याद होगा कि सानिया ने पृथ्वी का वर्णन एक संतरे के रूप में कैसे किया। एक संतरा लें, उसके छिलके को सावधानी से निकालें और एक मेज पर चपटे छिलकों को रखें। यह ठीक वैसे ही दिखाई देगा जैसे पृथ्वी का नक्शा। ग्लोब के चारों ओर छपाई पेपर या ट्रेसिंग पेपर लपेटें, महाद्वीपों का रेखा चित्र खींचें और उस कागज को सपाट रखें। ग्लोब ने नक्शे का रूप ले लिया है। ग्लोब की तरह नक्शे पर भी पृथ्वी के एक एक अंश को नाप कर छोटा दिखाया जाता है। नक्शे में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। इसलिए नक्शे में दिखाई गई 10 सेंटीमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर दिखा सकती है। पेज 17, ग्लोब तथा नक्शे के बीच तुलना। नक्शा, फर्स्ट पॉइंट, एक नक्शे में छोटे से क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है, चाहे वह एक मोहल्ला, नगर या देश हो। इसमें विश्व का कोई भी भाग दिखाया जा सकता है। टू, जबकि पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा ऊपर और नीचे के क्षेत्रों से ज्यादा चौड़ा है, नक्शे में यह सभी क्षेत्र एक जैसे प्रतीत होते हैं। अब ग्लोब, फर्स्ट पॉइंट, ग्लोब में पूरी पृथ्वी दिखाई जा सकती है। इसमें विश्व के छोटे छोटे क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। और सेकंड पॉइंट, नक्शे की तुलना में ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है, जैसे पृथ्वी का बीच वाला भाग ऊपर और नीचे वाले भागों से चौड़ा है, ठीक वैसे ही ग्लोब में भी है। आओ कुछ करें, एक ग्लोब और नक्शा अपने सामने रखें, उनकी तुलना कीजिए, देखिए दोनों में पृथ्वी किस ढंग से दिखाई देती है। पेज 18, मजे की बात, नक्शे और ग्लोब का इतिहास। 1, सबसे पुराना नक्शा मिट्टी की पट्टी के रूप में है, जो लगभग 2500 वर्ष पहले प्राचीन इराक में बनाया गया था। इस मानचित्र में मनुष्य का निवास स्थान नदी घाटी में दर्शाया गया है। 2, क्या आपको पता है कि पुराने नक्शों में सब राज्य अपने को पृथ्वी के केंद्र में दिखाते थे? जरा सोचिए, अगर हम भारत को दुनिया के नक्शे के ठीक बीच में दिखाएं तो कैसा लगेगा? 3, जिस तरह के नक्शे हम आज इस्तेमाल करते हैं, वह 400 साल पहले फ्रांस में बनने शुरू हुए थे। अब अभ्यास, इन सवालों का जवाब दीजिए। 1, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम क्यों अलग है? 2, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं? 3, ग्लोब और नक्शे की तुलना कीजिए, वह एक दूसरे से कैसे अलग हैं? 4, नक्शे बनाने के लिए अनुपात क्यों जरूरी है? अब रिक्त स्थानों के को भरिए। 1, पृथ्वी डैश से डैश दिशा में घूमती है। 2, पृथ्वी अपनी धुरी पर डैश घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है। 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकती है, इससे डैश बनते हैं। और 4, सूरज की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी डैश दिन लेती है।